ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकादमस्य दयिता किल देवहूति विश्वस्तमोहपतलातमभिप्रणाम्य तुष्टावतत्त्वविषयं किदसीधिभूमिम् अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कदम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गए। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि संख्य दर्शन के प्रतिपादक है, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तत्पर्य भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया, वो आध्यात्मिक पाद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्धि भूमि द्वारा यहां पर व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल ने जिस संख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, उससे समाजकार माया द्वारा बद लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, पदार्थ जरत्व के चंगुल से छुटकारा पा सकता है। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ। अतः उन्होंने अपनी स्तुतियां द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी संख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है, वो भक्ति को प्राप्त होता है, और इस संसार में वो कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। तो भगवान कपिल देव देवहूति को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है, और अंत में तो भक्ति योग के बारे में देवहूति को बताए थे, और उन्होंने जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने भी बोला कि योग्यता क्या है, तो योग्यता होना चाहिए भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए और उत्तम अवस्था पर पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले तो गुरु के पास तो जाना है, और जिस रूप गोस्वामी भी बताता है भक्ति रसमृत सिंधु 64 भक्ति के अंग है, सबसे पहले है गुरुपद आश्रय। तो गुरु के पास जाना है सबसे पहले, और कैसे जाना है ये भी हमको तो समझना चाहिए, और शास्त्र में भी लिखा है, कृष्ण भी भगवद गीता में भी बताता है, तद्विधि परिपातेना प्रश्न न सेवया उपदेक्षति दे ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः परिपात न प्रश्न न सेवाया। तो विनम्र भाव में गुरु के पास जाना है। हमको तो समझना चाहिए, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको तो मालूम है, हमको कुछ नहीं मालूम है कि कैसे आगे जाना है भक्ति मार्ग में। और इसलिए तो गुरु जी के पास जाता है, तो इसलिए विनम्र भाव में भी जाना है। हमको कुछ नहीं मालूम है, वो ऋषियों के पास जाता है, पूछताछ करते हुए हम कुछ सीख सकता है। तो विनम्र भाव उनके पास जाना है और पूछताछ तो करना है। और इसके बाद सेवा या तो सेवा भाव में रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए सेवा करने के लिए। तो ये भी जरूरत है। कभी कभी कोई जाता है गुरु के पास सिर्फ ऐसा कह के गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन सेवा भाव नहीं है, सेवा नहीं करना चाहता है। सुख पूर्वक रहने के लिए आशीर्वाद भी लेता है। बहुत सारे लोग जैसे हिंदुस्तान में देखता है, बहुत लोग वृंदावन में भी आता है और गुरु जी के पास जाना चाहता है, उनके चरण कमलों स्पर्श करना चाहता है और सोचता है उनके पैर छूते हैं इससे तो सब कुछ मिलता है, आगे जा सकते भक्ति मार्ग में और सुखपूर्वक रह सकते है इस भौतिक जगत में। ठीक है, जब आशीर्वाद मिलता है तो ऐसे तो हो जाएगा जरूर, लेकिन सेवा भाव में होना चाहिए और जो उपदेश देता है गुरु जी इसका पालन भी करना चाहिए। जैसे गुरु जी कहता है तो जप करना है, सोलह माला जप करना है और नियम का पालन करना चाहिए और अच्छे तरह से दूसरे के साथ रहना चाहिए बिना लड़ाई। तो विनम्र भाव रह के सेवा करते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए जो ऐसे चलता है गुरु के आदेश अनुसार तो आगे जा सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, भक्तियों के उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। सो यहां पर तो इस श्लोक में मैत्रेय विदुर को बताता है कि तो माता देवहूति कपिल देव की माता है, तो हाँ लेकिन भक्त भी है। जैसे यशोदमा कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा मूल रूप सबके उद्गम, तो कृष्ण भगवान की माता है यशोदा, लेकिन फिर भी तो यशोदमा श्रीमती यशोदमा कृष्ण की सेवक है, सेवा करती है, सेवा भाव में है। और वास्तव में तो हाँ यशोदमा नंद बाबा के स्वरूप भी कृष्ण ही है। तो यशोदम ये देवहूति भगवान श्री कपिल देव की माँ है और कदम मुनि की पत्नी थी। और कदम मुनि एक बहुत बड़े योगी थे, शुद्ध वैष्णव थे और तो इस उनकी कृपा से, करुण मुनि की कृपा से और अंत में कपिल देव की कृपा से उत्तम अवस्था पर पहुंच गए, भक्ति के उत्तम अवस्था पहुंच गए। और इसलिए उनकी कृपा से बहुत सुंदर स्तुति भी उन्होंने अर्पण किए और इससे भगवान संतुष्ट हो गए। तो भक्ति के अलग अलग अंग है, जैसे भक्ति रसमृत, भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी उन्होंने लिखा है 64 अंग है और क्या करना है क्या ना करना है बताता है। और ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा के संबंध में उपचार इसमें लिखा है, अंग लिखा है। और नवविध भक्ति इसमें भी उन्होंने दिया है और अंत में पंच महत्वपूर्ण अंग, तो नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरवास, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, साधु सांगा। और नवविध भक्ति में इसमें दिया है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्यम, सक्यम, आत्मा निवेदनम। सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना चाहिए, गुरु जी से वैष्णव से, शुद्ध वैष्णव से, और शास्त्र पढ़ते हुए ये भी एक प्रकार के श्रवण है, जैसे यहाँ पर मैत्रेय ने कहा तो हम सुनता है कि क्या कहा मैत्रेय। तो सबसे पहले हमको सुनना चाहिए अच्छे तरह से, और दीर्घ काल के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए तो पर्याप्त नहीं है, रोज रोज हमको सुनना चाहिए, सुबह शाम को और दिन में भी अगर समय है थोड़ा सा पढ़ना भी है। इसे करते हुए तो ये कुछ रहेगा दिल में, मन में, भावना में, और इसके बाद हम कुछ बोल सकते हैं, इसके बारे में भी दूसरे को भी बता सकता है। तो ऐसे करते हुए हम उनका स्मरण भी कर सकते हैं। अगर अच्छे तरह से नहीं सुनता है और बोल भी नहीं पाता है तो उसी समय तो इसके बाद भगवान का स्मरण करना संभव नहीं है। सुनना चाहिए, इसके बाद यथासंभव बोलना भी चाहिए, दूसरे को बताना है, और इसके बाद कृष्ण का स्मरण हो सकता है। और रोज रोज भी पद सेवा नाम, कुछ सेवा करना चाहिए भगवान के प्रति, पद सेवा नाम भी होना चाहिए। सिर्फ सुनता है और कोशिश कर रहा है भगवान का स्मरण करना, ये ठीक है, लेकिन हम तो कृष्ण के नित्य दास है, जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम उनके दास है, सेवक है, मतलब सेवा ही करना चाहिए, संबंध है कृष्ण के साथ, नित्य संबंध, आध्यात्मिक अवस्थ पे, सच्चिदानंद अवस्थ पे, कृष्ण सच्चिदानंद वस्तु है, सच्चिदानंद विग्रह है, और जीवात्म भी सच्चिदानंद वस्तु विग्रह है। तो उस अवस्थ पर हमको पहुंचना चाहिए, और उस अवस्थ पर हमको वास्तविक सेवा कर सकता है, पाद सेवनम, उनके चरण कमलों के प्रति सेवा करना चाहिए, पाद सेवनम अर्चनम, विधिवत पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भगवान का साक्षात दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है, और दर्शन नहीं मिल सकते सेवा कैसे कर सकता है। इसलिए भगवान की कृपा से, शुद्ध वैष्णव की कृपा से, तो आच्छ विग्रह में प्रकट हो जाता है, जैसे यहां पर मार्बल के ठाकुर जी है, या पत्थर के है, और अष्ट धातु के है, मानी माई ठाकुर जी क्या है, या और जब उत्सव है गोबर से भी बना सकता है, या मिट्टी से भी बनाता है कभी कभी, जैसे गोवर्धन पूजा के लिए गोबर के गोवर्धन कृष्णा गिरिधारी बनाता है और उनकी पूजा करता है, और चित्र से चित्रकार राधा कृष्ण की छवि बनाता है, तो जब उनका दर्शन मिलता है, उनकी पूजा कर सकता है, तो उनका स्मरण कर सकता है। बिना ठाकुर जी की पूजा करने से तो उनका स्मरण करना बहुत मुश्किल है, श्रवण मात्र से भी संभव है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए उनका दर्शन भी लेना है रोज रोज ठाकुर जी के, सुबह दोपहर के समय शाम को, ऐसे करते हुए उनका स्मरण कर सकता है अल्प मात्र से, और भजन करते करते जब मान भावना चित शुद्ध हो जाता है तब अच्छे तरह से भी उनका स्मरण कर सकता है। और तो इसके बाद भी इसमें प्रहलाद महाराज ने बोला वंदनम अर्चनम वंदनम, जैसे यहां पर भी किया है देवहूति माता, स्तुति अर्पण किए थे, तो स्तुति अर्पण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारे स्तुति स्ताव है, स्तोत्र है, अष्टकम है, श्री चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद के, कृष्ण बलराम के, राधा श्याम सुंदर के, ब्रह्म संहिता है, बहुत सारे है, तो हम स्तुतियां का भी उच्चारण करना चाहिए, ये भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब इसका उच्चारण करता है जो श्लोक का अर्थ है अपना दिल में जरूर आएगा, जैसा कस्तूरी तिलकम ललात पातले वक्षस्थल कौसुभम नासाग्रे वर मुक्तिदम करतले वेणुकारे कंकणम सर्वंगारी चंदनम सुलितम कंते च मुक्तावली गोपा स्त्री परिवेशितो विजायते गोपाल चूरमानी। तो ललत पद बहुत सुंदर तिलक लगाता है, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी से बने हुए कस्तूरी और चंदन इसमें है, तो ये लगाता है ललत पे। वक्षस्थले कौस्तुभम, चति पे कौस्तुभ मानी है, और नासाग्रे एक बहुत सुंदर मानी है, और इसके बाद करताले, करताले हाथ में वंशी, इसलिए उनके नाम भी है मुरलीधार, वंशी, वंशीधार कंकन भी है यहाँ। और सार्वंग हरिचंदनम, कभी कभी माँ गर्मी ऋतु में, शरीर ऋतु में नहीं लगाता है, चंदन लगाती है, ये कभी कभी निकुंज लीला में दोपहर के समय भी राधा कुंड पे गोपियां गर्मी ऋतु में लगाता है, कृष्ण को चंदन लगाता है। तो इस प्रकार जब मंत्र को चरण करता है और इसका आद भी मालूम है तो इसमें उसी समय मन में आ जाता है कृष्ण का बहुत सुंदर रूप, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर शिकंद शेखर स्मरहस मुलिना मनोहार। तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर का रूप, घनश्याम उनका नाम भी है, मेघ श्याम जिसे बादल है, तो वर्ष ऋतु के बादल के समान उनके शारीरिक तो रंग है। तो इसलिए स्तुति आत्मक करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे कहते हुए उनका स्मरण कर सकता है और लीला का स्मरण भी हो जाती है, जिससे राधा चिंत निवेशनम यशकंतेर विलोपिता श्री कृष्णा चरणम वंदे राधा लिंगर विग्रहम। सो राधा लिंगर विग्रहम श्री कृष्ण चरणम वंदे, उस कृष्ण को वंदन आत्म करता है उनके चरण कमलों पे, जो राधा लिंगर विग्रहम, तो श्रीमती राधा रानी का लिंग करता है। और जब कभी कभी उनका स्मरण करता है, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करता है कृष्णा, तो क्या होता है, राधा चिंतन निवेशनम यस्य कंतिर विलोभिता, जब श्रीमती राधा रानी का चिंतन करता है उनके रंग श्याम रंग बदल जाते हैं और गोरे हो जाते हैं। तो जैसे इमली तल पे ये लीला हुई रस नृत्य के बाद, तो कृष्ण ने छोड़ दिया सब गोपियां को और इसके बाद इमली तल पे पहुंच गए और वहां पर श्रीमती राधा का चिंतन उन्होंने किए थे, तो और उनका रंग बदल गया। और जब गोपियां वहां पर पहुंच गए तो देखा, ऐसा लगता है ये श्याम सुंदर है लेकिन उनके गोरा रंग है, तो नजदीक आ गए और तो अंत में तो कृष्ण फिर से उनका रंग बदल गए, लेकिन कुछ समय के लिए उनके गोरे रंग थे। और इसलिए उनका भी महाप्रभु का आविर्भाव तो भी हुआ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव और ड्यूटी लेकर आया है। श्रीमती राधा रानी का प्रणय मतलब उनका प्रेम का अनुभव करने के लिए, और जब प्रेम करते हैं कृष्ण के प्रति तो उसी समय तो कृष्ण के गुण, जैसे उनके उनके अद्भुत गुण है, बहुत सारे गुण, अनंत गुण है, लेकिन जैसे भक्ति रसमृत सिंधु में 64 गुण लिखा है रूप गोस्वामी पाद ने, तो इसमें तो जैसे ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान है, सर्वशक्तिशाली है और इत्यादि है, और लेकिन 4 गुण जो सबसे सुंदर है, मधुर्य गुण है, और सिर्फ कृष्ण के पास है, दूसरे भगवान के रूप में नहीं है, जैसे विष्णु के पास ये नाय, रामचंद्र के पास भी नाय है, द्वाकदीश के पास भी नाय है, यह है वेणु मधुर्य, रूप मधुर्य, और उनके जो प्रेम संबंध ब्रज में, प्रेम मधुर्य और उनके लीला, ये अद्भुत है, सबसे सुंदर है, प्रिया है, मधुर्य है। ये जब श्रीमती राधा रानी सेवा करती है प्रेम से, तो उन मधुर्य का अनुभव कर सकती है और इससे बहुत आनंद मिलती है। इसका अनुभव करने के लिए कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है। तो इसलिए अलग अलग श्लोक का चरण बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। और लेकिन फिर भी अगर सरल भक्त है और उनके लिए मुश्किल है बहुत श्लोक का चरण करना और सीखना है, तो उसी समय तो सिर्फ महामंत्र को चरण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो ये उसी समय भी भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकता है और उनके जो लीला का अनुभव कर सकता है। लेकिन शुरुआत में हमको जरूर गुरुजान से वरिष्ठ वैष्णव से तो इसके बारे में कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए। अगर श्रवण नहीं करते हैं तो अच्छे तरह से जप नहीं कर सकता है और भावना में प्रकट नहीं हो जाएंगे कृष्णा। तो दूसरे भी करना है, भक्ति के अंग भगवत श्रवण और भगवान का दर्शन भी लेना है। तो ऐसा करते हुए हम अच्छे तरह से जप कर सकते हैं और भगवान का साक्षात स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं और अपना स्वरूप का अनुभव कर सकता है। यहां पर भी इस संबंध में तो बताता है तो तत्व ये मूल सिद्धांत क्या है इस विषय में तो बताता है सीधी भूमि सुसीधी मुक्ति की पृष्ठ भूमि। तो और तपार्य में प्रभुपाद भी बताता है जब तो इस दर्शन जो यहां पर उन्होंने कपिल देव देवहूति माँ को बताया था, तो जब इसके अनुसार चलता है पद्धति मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। एक चीज है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। जैसे हमको मालूम है और सुना है भगवान तो कृष्ण भगवान है और शरीर ना है अभी तो आत्मा है, तो सुना है लेकिन इसका अनुभव करना भी चाहिए। पर्याप्त नहीं है सिर्फ सिर्फ श्रवण करना और समझना, ठीक है मैं समझता हूं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत लोगों से तो पूछ सकते हैं, ज्यादा लोगों को तो उनके विश्वास है कि भगवान हाँ है, कृष्ण भगवान है या रामचंद्र भगवान है, तो और हम शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, उनके उनके साथ हमारे संबंध है, लेकिन भजन आय करता है सिर्फ गुरु की कृपा से भगवान की कृपा से। उनको मालूम है कि भगवान है और हम भगवान के दास है। तो ये ज्ञान है, पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इसके बाद एक पद्धति है। जब तो यह है कि गुरु के आदेश अनुसार भजन करना है, नाम कीर्तन करना है, भगवत श्रवण करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, यह पद्धति है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं भगवान का साक्षात स्वरूप और अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप इस भौतिक स्थूल और लिंग शरीर से पृथक आध्यात्मिक स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। जब पद्धति तो जो जो दिया गया है इसका पालन करता है मार्ग, तो मार्गदर्शन लेना है गुरुजी से लेकिन इसके बाद इस पे चलना तो चाहिए, नहीं चलता है तो परम गति पर नहीं पहुंच सकता है। सो चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को कहीं पर जाना है, यहां से मुंबई जाना चाहता है, तो पैसे पहले तो पूछना चाहिए कौन सी गाड़ी चलती है वहां पर। अगर रेलगाड़ी से जाना है किस समय चलती है और कितना पैसे चाहिए, तो इसके पार तो सबसे पहले तो हाँ तो पूछताछ किया। इसके बाद टिकट खरीदना है, इसके पार इसके बाद तो प्लेटफॉर्म पे जाने है और पकड़ना है रेलगाड़ी, इसके बाद पहुंच सकता है। और अगर विदेश जाना है और मुश्किल है, उसी समय पासपोर्ट चाहिए, इसके बाद वीजा भी चाहिए और भी पैसे चाहिए, तो और मुश्किल है।
बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, उनकी इच्छा है बाहर जाने के लिए, चेष्ट कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब भगवान की इच्छा हो और गुरु की अनुमति है तो जा सकते हैं। तो वैसे ही गोलोक वृंदावन जाने के लिए तो बहुत चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सो सीधी भूमि महत्वपूर्ण है यहाँ पर है। जीवन मुक्ता भी यहाँ पर बताता है श्रील प्रभुपाद, जीवन मुक्ति तो ये उत्तम अवस्था है। इस भौतिक जगत में भी रहते हुए भी उस अवस्था पर पहुंच सकता है। इसिया यहाँ यश रे दश्या कर्मणा मनसा गिरा निखिल सवस्तु जीवन मुक्त से उच्चते। कौन ऐसे कहलाता है जो यहाँ यशहर दश्या, जो समझ सकता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास है और क्या करते हैं, कर्मणा मनसा गिरा तन मन वच से हमेशा भगवान की सेवा में लीन है। इसके फलस्वरूप यह है कि अनुभव कर सकता है कि हम शरीर नहीं है अपितु कृष्ण के नित्य दास है। तो ये जीवन मुक्ति है जब अनुभव कर सकता है भगवान का साक्षात स्वरूप और अपना अपना स्वरूप आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप। दूसरा नाम है स्वरूप सिद्धि, जब अपना आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर सकते इसका नाम है स्वरूप सिद्धि। तो प्रभुपाद भी ये भगवत गीता में इसके बारे में उन्होंने लिखा है को ये ये क्या है ये सब पृष्ठभूमि इस इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा है, लेकिन इसमें बताता है ये परम गति क्या है, ये ब्रज में प्रवेश करना और ये स्थापित करना, ये संबंध कृष्ण के साथ पंच प्रकार के संबंध है। संत रास, दस्य रास, सख्य रास, वत्सल्य रास एवं मधुर्य रास या भाव। तो पहले अनुभव करना चाहिए, तो ये मधुर्य भाव या रति, पहले रति भाव आ जाता है, बाद में जब सिद्ध वस्त्र पे है इसमें रास में बदल जाता है। जब सिद्ध ना है कोई रास की प्रश्न ना है वास्तव में। जैसे रसिक वैष्णव कौन है, जो जिन्होंने तो अनुभव किया है अपना स्वरूप और तो और उस वास्तव पे कृष्ण की सेवा करता है। तो यह नित्य सिद्ध परिकार रास में लीन है। तो लेकिन इससे पहले सबसे पहले अनुभव करना चाहिए अपना संबंध कृष्ण के साथ। हम और यह है कि तो ऐसा लगता है कि संत रस भी है, लेकिन वास्तव में गोलोक वृंदावन में सब तो सेवा करता है, जैसे पशु पक्षी और सब कृष्ण की सेवा करता है। ऐसा लगता है कि संत रस में है, लेकिन वास्तव में ये भी उनके भाव है, सच्चिदानंद स्वरूप है। पशु पक्षी जिससे तोता सुख सारी कृष्ण की गुणगान करता है, सुख कृष्ण की गुणगान करते हैं, सारी श्रीमती रानी की गुणगान करती है। तोते के रूप में पक्षी के रूप में है लेकिन फिर भी बोल सकता है। तो उनके तो दास्य भाव भी है और तो सब क्योंकि जैसे बछड़े भी और गाय उनके उनके भी दस्य भाव है और वत्सल्य भाव भी है। गाय कृष्ण को दूध पिलाना चाहती है ये गाय, जैसे माँ यशोदा माँ जब कृष्ण छोटे थे तो उसी समय दो पिलाती थी, दूध पिलाती थी, स्तनपान किए थे कृष्णा। तो उनके सब उनके तो ऐसे भाव है, दस्य भाव या सख्य भाव मित्र है, सुदाम सीदाम सुबाल मधुमंगल, वत्सल्य भाव यशोदमा नंद बाबा और सबसे ऊंचे भाव आदि रास है, मधुरी भाव है ये गोपियां के है और सबसे ऊंचे श्रीमती रानी के उनके महाभाव। तो सबसे पहले तो अपना संबंध अनुभव करना चाहिए, इसका नाम है स्वरूप सिद्धि। जब अनुभव किया है मेरे संबंध क्या है कृष्ण के साथ, तो प्रभुपद ये लिखा है तो, लेकिन उन्होंने वहां पर लिखा है स्वरूपगत एवं वस्तुगत एक ही चीज है, स्वरूप सिद्धि या स्वरूपगत एवं वस्तु सिद्धि या वस्तुगत। पहले अनुभव करना चाहिए इस भौतिक इस शरीर में भी, जब अनुभव किया है ये जीवन मुक्ति है, मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्ति और स्वरूप सिद्धि एक ही चीज है, तो पहले इसका अनुभव करना चाहिए और ये भी संभव है इस शरीर में। लेकिन उसी समय तो लीला में नहीं है, लेकिन लीला में भी प्रवेश करना है, मालूम है कृष्ण हम कृष्ण की शाखा है या सखी है, लेकिन और उनका स्मरण भी कर सकता है, लीला स्मरण भी कर सकता है, लेकिन लीला में नहीं प्रवेश कर सकता है, अल्प मात्र से कुछ सेवा कर सकता है भाव से या शरीर से भी, साधक रूप में सिर रूप में छत्र ही दोनों तरह से सिद्ध शरीर से या सड़क शरीर से सेवा भी कर सकता है अल्प मात्र से, लेकिन लीला प्रवेश करने के लिए गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, और सबसे पहले जहां पर प्रकट लीला है कृष्ण के वहां पर जाना चाहिए। जब वहां पर एक बार वो जन्म लेता है गोपी के गर्भ से, उसी समय नित्य सिद्ध परिकार के संग में लीला में प्रवेश कर सकता है, और इसका नाम है वस्तु सिद्धि या वस्तुगत। तो यह उत्तम अवस्था है और यह हमारा तो परम गति है, और जब अच्छे तरह से सदन भजन करता है गुरु और गौरांग कृपा से इस शरीर भी तो स्वरूप अवस्था पर जीवन मुक्ति के अवस्था पर पहुंच सकता है, ये परम गति है। तो हमको लेकिन हमको अच्छे तरह से प्रयास करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, अन्यथा तो संभव नहीं है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? सब ठीक है? हाँ सरल है, ठीक है। और अभी भी महाप्रसाद मिल सकते हैं, आप यहां पर आइए। ग्रंथ राज श्रीमद भगवतम की, गोनिताय की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की, शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की।